खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि उसने आज का दिन हम सबको बख्शा, और ये वो वक्त है जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। जितनी भी प्रोसेस की गई है ये हमारी रूहों को तैयार करने के लिए है। जैसे आप जब भी कोई लजीजा चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर जो बहनें खाना बनाती हैं, अच्छा खाना बनाती है, वो चाहती हैं कि हर वो चीज़, हर किस्म का मसाला, हर तरह की चीज़ तैयार की जाए, ताकि जब हंडिया तैयार हो जाए तो खाने वाले कहें वाह। इसी तरह प्रस्तुत भी हम देख सकते हैं हमारी रूहों की तैयारी के लिए है, ताकि हम अपना पूरा दिल, अपनी पूरी तवज्जो खुदा के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि इस वक्त आप में से हर एक जो यहाँ पर बैठा है, किसी ना किसी जगह पर आपकी सोच लगी हुई है। सो मैं चाहता हूँ कि अपनी सोच को उस तरफ से हटाएं, उस सोच को सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ लगाएं, और खुदा के हजूर दुआ करेंगे कि खुदा बाप, आज हम जो कुछ सीखने के लिए आए हैं, आज हम इतनी सर्दी में तैयार होकर इसलिए आए हैं ताकि तेरी जिंदा आवाज़ को सुने, ताकि तेरे कलाम को सुने, ताकि हम अपने बच्चों के लिए, ताकि अपनी बहनों और भाइयों के लिए, ताकि अपने खामंद के लिए जो बहनें शादीशुदा हैं, ताकि जो खामंद यहाँ पर मौजूद हैं अपनी बीवियों के लिए बरकत का बायस ठहरें, अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस ठहरें। सो आए हम सब, सब मैं चाहता हूँ सब अपने लबों को खोलें और दुआ करें, सब खुदावन से उसका कलाम, उसकी हिकमत, उसकी दनाई, उसके रहम को मांगेंगे कि खुदा बाप हमें तू अपना कलाम समझने की, कबूल करने की और उस पर अमल करने की कुव्वत और ताकत दे। आए हम सब अपने लबों को खोलें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरे शुक्र गुज़ार हैं आज की सुबह के लिए, आज के कलाम के लिए। खुदा बाप आज का कलाम हमारी खुदा उन मुसीबतों में हमारे लिए खलासी, रहाई, छुटकारे का बायस बन जाए, और खुदा आज का कलाम हमारी ना अमीदी में अमीदी का अमीद का खुदा खुदा बायस बने। आज का कलाम हमारी तारीख की के उन जिंदगी के उन तारीख कोनों में खुदावन नूर की मानद चमके। आज का कलाम मेरे टूटे हुए हौसले के लिए खुदा बाप हौसला फजाई बन जाए। आज का कलाम तेरा जो खुदावंद खुदा जिंदा और पाक है, मेरी जिंदगी के लिए तरबियत और नसीहत और कुदरत का बायस बन जाए। अपने खुदा के हजूर उसको पुकारें, क्योंकि वो पुकारने वालों को जवाब देता है। सो खुदा बाप आज हम जो कुछ भी यहां से सीखें, हम सबको सुनने की, और खुदावंद खुदा जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, हम हर रोज तेरे लिए तरसें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आपने गीत सुना होगा कि 12 बरस से बीमार जो औरत थी, हकीमों के पास अपना रुपया पैसा सब कुछ दे चुकी थी, सोना चांदी, अपना वक्त सब कुछ उसने लगा दिया, लेकिन उसे शफा नहीं मिली। लेकिन जब उसने सुना कि एक हकीम है, एक जिंदगी देने वाला है, एक जो मुर्दों को जिंदा, एक जो लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखें, बीमारों को शिफा और कोड़ियों को पाक और साफ करता है, वो उसे क्या कर सकता है, शफा दे सकता है। तो उसी की कहानी में से एक गीत बनाया गया है, उसकी एक लाइन कहेंगे और फिर खुदा का कलाम सुनेंगे। सब कहेंगे, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें हिरनी की तरह प्यास होनी चाहिए कि खुदा बाप तेरा कलाम जो तूने कहा है कि जिंदगी का पानी है, मेरी जिंदगी की तमाम कमियों में, उन तमाम बंजर इलाकों में जो मेरी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, उसे सराब करने का, हरा भरा करने का बायस ठहरे। इसलिए हम सब कहेंगे एक बार फिर, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास दिल की बुझाने दो, प्यास दिल की बुझाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुवत ने मुझको बचाया, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुवत ने मुझको बचाया, नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, जाने दो। हालेलुया। जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें, इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाप उसकी 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाप 19वीं और 20वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, सब गौर से सुने, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आमीन। हम पिछले महीने से इस बात पर सीख रहे हैं कि खुदावंद ने हर एक बेटी, बेटे के लिए, बच्चे के लिए, खासकर जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा पाक रू की कुदरत को क्या किया है, मुहैया किया है। हम पिछले दिनों से, पिछले महीने से इसी बात पर सीख रहे हैं कि हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत यहां पर मौजूद है, ताकि हम मुसीबत में उस कुदरत का सहारा ले सकें, ताकि हम मुश्किल में उस मुसीबत का सामना करने के लिए खुदा की कुदरत का सहारा ले सकें। जैसे दाऊद नबी जब बियाबान में है, दाऊद नबी जब सताया जा रहा है, लोग उसके मुखालफ हैं, और वो कहता है कि मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं, वो रो रो कर दुआ करता है, लेकिन कहता है कि खुदावंद जिस पर मेरा तवक्कल है वो मुझे कुव्वत और ताकत और रहाई देगा। आपका भी तवक्कल उस पर होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम इस कलाम में से सीखें कि उस कुदरत ने ना सिर्फ आपको रहाई दी, उस कुदरत ने ना सिर्फ उस 12 वर्ष से बीमार औरत को शिफा दी, उस कुदरत ने ना सिर्फ उस जन्म के लंगड़े को चलने के लिए काबल बनाया, उस कुदरत ने ना सिर्फ जिक्रिया और लिशबा को यहन्ना दिया, उस कुदरत ने ना सिर्फ एलिया के लिए आसमान से आग बरसाई, उस कुवत और ताकत ने ना के सिर्फ हनू के लिए ये मुमकिन किया कि वो खुदा के साथ चले, वो कुवत आज आपके लिए भी सब कुछ करने की कुवत और ताकत रखती है। और उसी कुवत ने इसे कौन सी क्या कहते हैं, खुदा पाक रू की कुवत। किसे क्या कहते हैं? खुदा पाक रू की कुवत। खुदा बाप है जिसने क्या किया, अब हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस जमीन पर भेजा, और यीशु मसीह ने क्या किया, हमें एक मददगार दिया। क्या दिया? एक मददगार। सो आज हम सीखेंगे कि ये कुवत, जिसने आलसो यानी के यीशु मसीह को भी मुर्दों में से जिंदा किया। और ये कुव्वत किसकी है? खुदा बाप की। सो मैं चाहूँगा कि आज हम सीखें, इस दुनिया में बहुत से अजूबे हैं, इस दुनिया में बहुत से अजीब वाकयात हुए हैं, लेकिन वाहद एक शख्सियत है, वाहद एक ऐसा शख्स है जिसकी कब्र आज खाली है, और वो है कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। दुनिया में 7 अजूबे पाए जाते, लेकिन 8वां अजूबा कौन सा है, किसी को पता? खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। और खुदा ने क्या किया, 20वीं आयत को देखेंगे, सब मेरे साथ कहें,
जो उसने
मसीह में की,
जब उसे
मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। ये खुदा की कुदरत ने किया कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाकर आसमानी मकामों पर बिठा दिया। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग इस सच्चाई से वाकफ हो और जाने कि हमें यीशु मसीह में क्या कुछ हासिल है। क्या आप जानते हैं आपकी हालत, आपका मकाम, आपकी शिनाख्त यीशु मसीह में क्या है? आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ये आपकी शिनाख्त है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह में आपको आसमानी मुकामों पर बहुत उम्दा जगह हासिल है? क्योंकि ये बात खुदा का कलाम कहता है, और मैं चाहता हूं कि आप सब इन बातों से वाकफ हों और इनको जानें, इन पर यकीन करें, ताकि जब यहाँ की बेटियाँ शादी ब्याह करके किसी दूसरे शहर में जाएं, तो वहाँ पर हमारी कलीसिया का नाम हो कि फलां शहर से, फलां चर्च से, फलां की बेटी कलामे खुदा से, यीशु मसीह से बहुत प्यार करती है। आपके सामने जिंदा मिसाल है, बहन भाई खुरम की बीवी, खाला रक्साना की कह सकते हैं बहू, मियाँ चन्नू से उसे यहाँ पर बिहा कर लाए हैं, और जब से उनकी शादी हुई है मैं उनको देख रहा हूँ कि वो रेगुलरली चर्च में आ रही, यानी कि जब भी मौका होता है वो दुआ के लिए आती हैं। तो क्या हुआ, इससे हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि बहन अपने घर में दुआ करती है, वहाँ पर खुदा का खादम, वहाँ पर कलीसिया है जो खुदा के कलाम को, खुदा के हजूर झुकने को क्या करती है? अहमियत देती है। इसलिए यहाँ की बच्चियाँ भी जब शादी हो जाए तो किसी भी शहर में जाएं, तो वहाँ पर पादरी साहब कहे कि ये चेहरा नया है, ये चेहरा, ये बेटी किस शहर से आई है, इसके पास खुदा के लिए बहुत प्यारा दिल है, मोहब्बत करने वाला दिल है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। जब कोई बहन यहाँ पर शादी करके आए तो नौजवानों के रवैये में, नौजवानों की ज़िंदगी में वो बहन देखे कि वाकया ही मेरा मियाँ रास्तबाज है, वाकया ही इस कलीसिया में खुदा है, ना कि सिर्फ हमारा ज़ाहरी चेहरा खूबसूरत दिखे, बल्कि नौजवानों का दिल खूबसूरत होना चाहिए। आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी बताऊंगा, इसी कुदरत ने रूहुल कुद्दस की कुदरत ने, किसने? रूहुल कुद्दस की कुदरत ने, जिस कुदरत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और जब हम पुराने अहदनामा में वो वाक्या देखते हैं, इब्राहिम और सायरा का वाक्या किसी को याद है? दो लोग हो चुके हैं ना, बहुत ज़हीफ थे, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन सायरा पर उस वक्त के बादशाह का दिल बेईमान हुआ। किस लिए? वो खूबसूरत थी अपनी 85 साल और 95 साल की उम्र के दौरान भी। खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता था, और खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में नूर की मानद चमकता था, ये उसकी खूबसूरती थी। और मैं चाहता हूं कि यहाँ की बहनें भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को, जैसे बहुत दफ़ा बहनों का शौक़ होता है कि बहुत से ड्रामे चल रहे हैं वो हांडी रोटी बंद करके उस ड्रामे को ज्यादा अहमियत देती हैं। मैं हरगिज नहीं कहता कि आप ड्रामा ना देखें, लेकिन बात करने की ये है कि हमने कोई ना कोई ड्रामा अपनी जिंदगी में रखा हुआ जिसे आप देखना चाहती हैं। आपने कोई ना कोई ऐसी चीज अपनी जिंदगी में रखी हुई है जिसे आप देखते हैं, अहमियत देते हैं। इसी तरह नौजवान हैं, उनकी जिंदगी में भी कोई ना कोई अदाकार, कोई ना कोई हीरो, कोई ना कोई उनकी जिंदगी में ऐसा शख्स या चीज है जिसे वो चाहते हैं कि मैं उसकी मानद बनूं। आपके जो भी शौक हैं, जो भी आपकी आदतें हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि जब आपकी यहां से रुखसती हो बेटी है, तो वो जिस भी कलीसिया में जाए वहां पर आरवाला शहर का नाम मशहूर हो, ना कि आरवाला शहर अखबार में आए कि वहां पर शराब का धंधा बहुत ज्यादा है, ना कि सिर्फ आरवाला शहर मशहूर हो कि वहां पर बम चलाने वाले बहुत कारीगर हैं, ना कि सिर्फ आरवाला शहर नौजवानों में कि वो नशे में बहुत ज्यादा आगे हैं। मैं चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है और खुदा की ये ख्वाहिश है कि आरवाला शहर मसीहत में, ईमान में, इस शहर के नौजवान बच्चे मसीह के साथ मोहब्बत में क्या हों, बहुत ज्यादा आगे हों, ताकि लोग कहें कि आरवाला ना कि सिर्फ गंदी बातों में बल्कि खुदा के साथ मोहब्बत में बहुत आगे है। आरवाला की बेटियां खुदा के कलाम में बेशक बहुत सी पढ़ी नहीं है, लेकिन वो खुदा को जानती हैं, वो खुदा से मोहब्बत करती हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जी हाँ। और ये कब होगा? जब हम इस ताकत को, जिस ताकत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, जिस ताकत ने उस 12 वर्ष से बीमार औरत को शिफा दी, तब जब हम इस कुवत को मौका देंगे, यही कुवत आपको सर्दी में घर से निकलने की ताकत बख्शेगी, ताकत बख्शेगी। जब हम सुनेंगे और जब भी ऐलान होता है, आपके अंदर वो धीमी आवाज कहती है दुआ का वक्त हो गया है, लेकिन बहुत से काम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन फैसला आपका है, फैसला आपका है कि आप किस बात का चुनाव करते हैं। सर्दी, सर्दी की वजह आपके सामने आएगी, तैयारी नहीं की उसकी वजह सामने आएगी, भाई रोटी मांग रहा है उसकी वजह सामने आएगी, अम्मी ने कहा है कि किचन का काम नहीं किया उसकी वजह सामने आएगी। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो वो अपनी तैयारी खूब करता है। मैं देखता हूं अपने घर में भी, हुमा है, जब कोई उसका पसंदीदा ड्रामा लगना है तो वो पहले से सफाई सब कुछ तैयार करके टीवी के आगे होती है। आप भी ऐसा ही करते हैं। नौजवान है, उनका कोई प्रोग्राम है, क्रिकेट के लिए जाना है, अम्मी अब्बू कुछ मर्जी कहे जाएं, उन्होंने क्रिकेट के लिए जाना है। सवाल यह है कि अगर कोई रोकता है हमें चर्च में आने में, अगर कोई रोकता है कि हम दुआ ना करें, तो वो सर्दी नहीं, वो क्रिकेट का मैच नहीं, वो ड्रामा नहीं, वो हमारी तैयारी नहीं, वो हमारी शर्म नहीं, बल्कि हम खुद हैं, हम खुद हैं, हम खुद हैं जो अपने आप को रोकते हैं। बच्ची मेरी तरफ देखें, हम खुद हैं। इसलिए आज देखेंगे कि ये कुदरत किस तरह काम करती है। यीशु मसीह वाहद वो शख्स है जिसने ये दावा किया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। कोई ऐसा तारीख में आपको शख्स मिलता है जिसने ऐसा कहा हो? नहीं मिलेगा, और ना ही किसी और के पास ये कुव्वत है कि वो मुर्दों में से जी उठे। मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब, उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक देखेंगे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह, ईद का माहौल बना हुआ है, ईद फसा है, यहूदियों की ईद जारी है, इन बच्चों को अगर हो सकता है तो आप किसी के हवाले करें या खाने के लिए कोई चीज दें। सो 19वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 86 बरस में ये मकदस बना है और क्या तू इसे तीन दिन में खड़ा कर देगा। यहाँ पर वो हैकल है जिसके बारे में यहूदी लोग परेशान हो गए कि यीशु मसीह ने एक मिनट में कह दिया कि मुझसे ढा दो तो मैं तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। 46 बरस में। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहूदी परेशान हो गए कि तू कहता है कि इसे तीन दिन में तैयार कर दूंगा, लेकिन वो सही बात नहीं समझे क्योंकि उनका जहन अपनी किसी और बात में मगन था। आज आप भी, जैसे मेरा जहन आपकी तरफ गया और मैंने गलत पढ़ा, इसी तरह होता है, होगा। हमारा मुखालफ यही चाहता है कि वक्त ज़ाया हो। आज गिरजा घरों में अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाइबल की तालीम कम, बाइबल को इज्जत कम, यीशु मसीह को इज्जत कम, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इसीलिए हमारी कलीसियाएं पीछे हैं। इसीलिए बहुत दफ़ा भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चे मुश्किल में, बजाय यीशु मसीह के गुण गाने के, हम मुर्दा लोगों के गुण गाते हैं। ऐसा ही होता ना, फलाने क्या, नहीं 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 उठे चले जा, 86 वाला बाबा बकरा लेगा काला, टब्बा ना होवे ते सारा कुछ मिल जूगा। ऐसा ही होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि खुदा के कलाम को इज्जत नहीं है। और मेरी ख्वाहिश और खुदा की ख्वाहिश यही है कि यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियाँ बच्चे बुज़ुर्ग खुदा के कलाम को अहमियत दें, खुदा के कलाम को अहमियत दें। आज से 4 इतवार पहले मैंने कहा था कि क्या कोई बहन रजाकराना तौर पर आज़ाद मर्जी से बच्चों की देखभाल करने के लिए कंबला इस्तेमाल कर सकती है। हाथ बहुत खड़े हुए थे लेकिन दिखा कोई भी नहीं। हाथ बहुत खड़े होंगे लेकिन जब काम करने का वक्त आएगा तो बहुत से बहाने, मुश्किलात आएंगी। जब मैंने अमेरिका में से वापस यहाँ पर आना था तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, रुपए पैसे की, अपना काम काज छोड़कर आने की सारी। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैं सब कुछ यहाँ पर लेकर आ गया और तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि क्या तू शदाई हो गया है। तो मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ खुदा के लोगों के लिए है, इसलिए तू फिक्र ना कर। मेरे पास भी वजह थी ना आने की, मेरे पास भी अब भी वजह है कि मैं पीछे अपना काम छोड़ कर आया हूँ। कैरी के पास, उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ, लेकिन उसके पास भी वजह है, लेकिन फिर भी हम वो आने के लिए तैयार है। हमारे पास कुछ पैसे कम पड़ गए, जिसे कहते हैं कि जो बच्चों को गिफ्ट दिए गए, तो कैरी ने कहा कि हमारे पास पैसे कम है, तो जिस जगह से हम अपना मकान छोड़ कर आए तो वहाँ पर हमारा सामान कुछ बचा था, तो मैंने कहा कि इसे बेच दो ताकि जिस मकसद के लिए हमने शुरू किया है उसको पूरा करें और खुदा बरकत देगा। अगर आप उस कुव्वत को जिसने यीशु मसीह को ज़िंदा किया उसे मौका देंगे तो अजीब काम होंगे और वो काम लोग देखकर खुदा की तारीफ करेंगे, ना कि किसी बंदे की। पिछले दिनों में एक बंदे ने कहा कि आप क्यों अपना वक्त, अपना रुपया, पैसा इन बच्चों पर लगा रहे हो। मैंने कहा जी ये खुदा का हुक्म है। पिछले महीने मैं थोड़ा सा परेशान था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस चले जाऊं, क्योंकि हालात, लोगों की बातें, ऊंची नीची सब तरह की। तो मैंने खुदा से दुआ की और खुदा से कहा कि खुदा बाप मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है, क्या तू ये चाहता भी है कि मैं यहाँ पर रहूं या किसी और जगह पर मुझे भेजना चाहता है। खुदा ने कहा कि यहीं पर रह जब तक मैं तुझे हुक्म ना करूं। जब तक मैं तुझे हुक्म ना करूं तू यहां से नहीं जाएगा। हर एक के सामने कोई ना कोई वजह है, हर एक के सामने कोई ना कोई सबब है। मेरे पास अगर मैं वजह निकालूं तो बहुत सी हैं। लोग बहुत दफ़ा, जब मैंने पहली दफ़ा यहाँ से जाने के लिए तैयारी की तो लोगों ने कहा कि ये वापस नहीं मुड़ेगा। जिस तरह बाकी गए हैं उन्होंने पूछा तक नहीं, ये वापस नहीं मुड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि अगर खुदा ना करे, अगर खुदा ने किसी और तरफ मेरा रुख ना किया तो जब तक मैं जीता हूँ मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। और ये किस तरह मुमकिन है? उस कुव्वत के बायस जिसे पाक रू कहा गया है। वो पाक रू आपके लिए मौजूद है, वो पाक रू आपके लिए मौजूद है। ना कि सिर्फ फैसल ही को खुदा इस्तेमाल कर सकता है, वो कैसर को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो आसब को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो अजीम को भी, वो नासर को भी, वो आंबर को भी, वो आदल को भी, वो समीना को भी, वो तहमीना को भी, वो अनीला को भी, वो हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरत है उस की आवाज़ सुनने की। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये आपको आवाज़ सुननी होगी। मैं आपका रूहुल कुद्दस नहीं बन सकता, रूहुल कुद्दस आपका मददगार है। उसकी आवाज़ को सुने और किसी भी मुश्किल को अपने रास्ते में आने ना दें। किसी भी मुश्किल को, किसी भी मुश्किल को अपने रास्ते में ना आने दें, किसी भी वजह को वजह ना बनने दें। आप सबको भूख लगती है, हम सब रोटी खाते हैं चाहे सर्दी हो, हम सब रोटी खाते हैं चाहे सारा दिन बत्ती बंद हो, खाते हैं ना। कोई भी शय रोक नहीं सकती क्योंकि हम उसे महसूस करते हैं। इसी तरह खुदा चाहता है कि कोई भी बात हमारे अंदर हमें रोकने वाली ना बने। वो भी इसी तरह महसूस आपकी भूख करता है। उसने आपको बनाया है, उसने आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। वो चाहता है कि आप उससे प्यार करें। आप उससे प्यार करेंगे आप बरकत पाएंगे, आप उससे नफरत करेंगे वो आपको बरकत देगा, आप उससे रद्द करेंगे वो आपसे प्यार करेगा, आप उससे बेवफाई करेंगे वो आपसे वफादार रहेगा। खुदा इंसानों की तरह नहीं कि थोड़ी सी बात बिगड़ी तो उसके बाद ना उस गली में जाना, ना फिर उससे मिलना, ना फिर बात करना। ये इंसानों का रवाज है। खुदा का रवाज क्या है? वो हम बेवफा लोगों के साथ भी वफादार रहता है, वो हम सब के साथ वफादार रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की मिसाल ना सिर्फ चीचावतनी, रावलपिंडी, लाहौर या इस्लामाबाद तक, बल्कि जब मैं वापस जाऊं तो मैं कहूं कि हाँ, मैं उन लोगों को जानता हूं कि आपके पास तो गाड़ियां हैं इसलिए आप वक्त पर आ जाते हैं, लेकिन मेरे शहर की कलीसिया जो गिरजे में आती है वो वक्त पर आती है। उनके पास गाड़ियां नहीं, वो वक्त पर आती हैं। आप खुश नसीब हैं, इस कलीसिया में 3 गिरजाघर हैं, लेकिन फिर भी हम वक्त पर नहीं पहुंचते। हमारे जब वहां पर गिरजाघर में जाते हैं तो 5-5, 10-10 मील पर, 20-20 मील पर, 2-2 घंटे की मुसाफरत कर गिरजे पर गिरजाघर में जाना पड़ता है, लेकिन पूरे वक्त पर। यहां पर पादरी साहब का गला फट जाता है लेकिन कलीसिया अभी तैयार नहीं। इसलिए इससे पहले कि खुदा के कलाम को ख़त्म करें, इन बातों को ख़त्म करें, हमारा जो वक्त है वो है 9:30 का। क्या आप चाहते हैं कि 10 बजे का टाइम किया जाए? कितने लोग चाहते हैं 10 बजे तक टाइम किया जाए? साढ़े नौ कितने चाहते हैं? 9:30 कितने लोग चाहते हैं? 100। 9:30 फिर आने की ज़रूरत है, 9:30 बजे आने की ज़रूरत है। इसलिए आप में से कौन कौन चाहता है कि जब आप दूसरे शहर में जाएं तो लोग आपकी तारीफ करें, आपके घराने की? टाइम पर आने की जरूरत है। जिस तरह रोटी को आप सब ने अहमियत दी है, खुदा के कलाम को अहमियत देने की जरूरत है। अगर मैं सात समुद्र पार से उड़कर यहाँ से यहाँ पर आ सकता हूँ, हर सुबह 4 बजे उठकर कलाम खुदा पढ़कर इसलिए तैयारी करता हूँ कि आने वाले बहन भाइयों की फिक्र है। जहाँ तो आप मुझे पागल कह सकते हैं या फिर दीवाना कह सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह को जवाब देना होगा कि मैंने ये लोग तेरी फिक्र भाल देखभाल में दिए थे। आपको फिक्र करने की लोड़ है, आपको संजीदा होने की जरूरत है। ज्यादा दूर नहीं, एक गली का फर्क है, 2 गली का फर्क है। इसलिए खुदा को ज्यादा ज्यादा प्यार करें। जब आप खुदा को प्यार करेंगे, आप पादरी साहब की इज्जत करेंगे, आप अपने खावन की इज्जत करेंगे, और खुदा का पाक रूह आप में कथरत से काम करेगा। आए हम खुदा के हजूर झुकें और दुआ करें।